Join me on a dialogue on sisterhood, womanhood, and all things parenting. Welcome to the Debina Bonnerjee Show. Let's talk about sleep today, the most underrated topic for a healthy life. To live healthy, हम अपने डाइट के बारे में सोचते हैं, वर्कआउट के बारे में सोचते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक चीज हम मिस कर जाते हैं, वो है स्लीप। आजकल तो मार्केट में कई सारी स्लीप गमीज और टैबलेट्स भी अवेलेबल है, पर वो तो बड़ों के लिए है, बच्चों का क्या? नए पेरेंट्स को सब पूछते हैं कि उनकी नींद पूरी हो रही है या नहीं, बट नोबडी टॉक्स अबाउट हाउ टू स्लीप ट्रेन योर चाइल्ड सो दैट यू कैन स्लीप वेल। आज आप और मैं साथ में सीखेंगे अबाउट द साइंस ऑफ स्लीपिंग विद आवर गेस्ट भक्ति पारिक। भक्ति इज एक्सपीरियंस्ड इन पीडियाट्रिक स्लीप कंसल्टिंग। शी इज अ सर्टिफाइड स्लीप कोच एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द लीस्ट एक्सप्लोर्ड टॉपिक व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग। चलिए कुछ सवाल पूछते हैं। क्या आप अपने बेबी को रॉक करके सुलाते हो, थपथपा के सुलाते हो? आप अपने बेबी को अलग बेड पे सुलाते हो? क्या आप अपने बेबी को दिन में नैप टाइम देते हो? क्या आपका बेबी रात में बार बार जगता है? तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हाय भक्ति, वेलकम टू द शो। हम लोग ये अनवेल होने के लिए वेट कर रहे हैं कि सोने का जो साइंस है ये क्या होता है, ये जानने के लिए। मुझे लगता है कि इस एपिसोड को मेरे जैसे कई सारी माएँ एकदम नज़र गाड़ के देख रहे हैं, बिकॉज दिस स्लीप इज़ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग ऑन अर्थ। हम सब के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन सोना चाहिए ये ऐसा लगता है कि मतलब सो रहे हैं, इट इज़ बीइंग अनप्रोडक्टिव। बट आई थिंक आप अगर अच्छे से सोते हो, यू विल बी द मोस्ट प्रोडक्टिव। सो लेट्स नो हाउ टू स्लीप। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड मेरा पहला सवाल शुरू करूँ।
यस,
व्हाट इज़ दिस स्लीप साइंस? और पेरेंट्स को पता कैसे चलेगा दैट उसका बेबी को कितना सुलाना चाहिए, कितना नहीं सुलाना चाहिए? सो आई वॉन्ट लाइक ABCDs।
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू देबीना फॉर गेटिंग मी ऑन द शो। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बिकॉज आई नो सारी माएँ आजकल, तो लेट्स से माएँ और लाइक मदर्स एंड फादर्स बोथ, ओके, बोथ आर स्लीपलेस। एंड यू नो, टू बिगिन विद, द मिनट आपका बच्चा आता है, यू नो द मिनट यू अनाउंस, आपको सब एक ही सबसे पहले चीज़ बोलते हैं कि भाई सो लो जितना सोना है, क्योंकि उसके बाद तो नींद नहीं आएगी, राइट?
एक्चुअली मैंने भी यही सुना था दैट प्रेगनेंसी इज द इजिएस्ट फेज, इसके बाद तो नींद गायब हो जाएगी। और मैं भी अभी लोगों को बोलती हूँ, मतलब दिस इज द इजिएस्ट फेज, अभी सो लो,
राइट? आज के तारीख में द मदर एंड फादर बोथ नीड टू गो बैक टू वर्क, एंड ऑल्सो वेदर यू आर गोइंग टू वर्क और नॉट, हम सबको हमारी नींद चाहिए, लाइक आपने बोला। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्लीप साइंस, बेबी को एक रूटीन में रखना पड़ता है, राइट? आपने प्रीनेटल क्लास की होगी, आपको सबने बताया होगा बच्चे का रूटीन रखना, फीडिंग स्केड्यूल करना, पर वो फीडिंग स्केड्यूल और स्लीप को कैसे कंबाइन करते हैं, दैट इज़ व्हाट स्लीप साइंस इज। स्लीप साइंस इज मेनली कि आपके बच्चे की रात की नींद कितनी होनी चाहिए, डे टाइम स्लीप कितना होना चाहिए, और आपका बच्चा पूरे दिन में कितना जगना चाहिए, कब आपको स्लीप क्यूज देखने हैं, आपको बच्चे को कौन से टाइम पे उनकी नैप्स करनी है, कितनी एडिक्वेट स्लीप उनको डे टाइम में चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका डे और नाइट कोरिलेटेड है, यू नो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी मैं भी कोई मॉम से बात करती हूँ, दिन तो ठीक है, रात को बस यू नो, रात को मतलब बहुत उठता है, रात को क्या करना चाहिए, पर आपका दिन कैसे जा रहा है वो भी आपकी नाइट को अफेक्ट कर रहा है।
एक्चुअली मैंने सुना था कि दिन में बिकॉज वी वॉक, जब बच्चा मतलब माँ प्रेग्नेंट है, बच्चा जब पेट के अंदर है, तो दिन में क्योंकि मम्मियाँ घूम घूम के काम करती थी तो उनको रॉकिंग मूवमेंट होता था, और रात को सोने के टाइम बच्चा जब मतलब मम्मी जब लेट जाती थी वो रॉकिंग मूवमेंट नहीं होता था, तो पेट के अंदर भी बोलते रात को वो थोड़े ज़्यादा हिलते थे, तो वही आदत रह जाती है, तो इसीलिए दिन में सोते हैं रात को जगते, दिस इज़ वॉट आई नो।
या
तो अभी आप उसको बताइए।
वो टोटली ट्रू नहीं है, ऑफकोर्स इन द फर्स्ट 4 मंथ्स, तो क्या होता है जब भी बच्चा बाहर आ रहा है, स्पेशली द फर्स्ट 4 मंथ, हम फोर्थ ट्राइमेस्टर बोलते हैं उसको, राइट? वो फोर मंथ्स में क्या होता है, द बेबी स्टिल अडेप्टिंग कि वो न्यू वर्ल्ड में आया है, एंड इट्स नॉट ओनली द बेबी, इट्स ऑल्सो फॉर द मदर एंड द फादर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, कितना आउंस दूध पी रहा है, कब पूप कर रहा है, क्या कर रहा है, राइट? उसमें वो बच्चा सो रहा है कि नहीं सो रहा है, वो भी हमें सब ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें कितनी बार क्या होता है दैट वी आर ऑल्सो ओवरवेल्म्ड विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट? साइंस का हेल्प ले और आप ये सोचे कि अच्छा मुझे पता है कि 0 to 3 months बच्चा, मैं आपको ये बताऊं कि अगर जब आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है, आपके बेबी को हर 60 minutes to 90 minutes में एक नैप लेनी है, तो मतलब अगर आपका बच्चा 8 बजे उठा है तो आपको आपके बच्चे को फीड करा के वो 1 घंटे के अंदर सुला देना है. बिकॉज फ्रॉम 0 to 3 months द बेबी इज ओनली सपोज टू बी स्टेइंग अवेक फ्रॉम 60 to 90 minutes ड्यूरिंग लाइक बिटवीन देयर नैप्स. तो वो नैप्स के बीच में हम क्या कहते हैं, मालिश वाली आ गई, ये आ गए, अरे इसको खेलना है, तो बच्चा 2-3 घंटे जग गया. अब अगर बच्चा 2-3 घंटे जग गया है एट दैट स्मॉल एज, तो बच्चा ओवर टायर्ड हो गया. फिर हम जब उनको फीड कर रहे हैं या हम उनको रॉक कर रहे हैं, तो क्या होता है, उनको वो नीड और ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी अभी अभी आया है, उसको हेल्प की ज़रूरत है. पर उसमें आपने उसको इतना एग्जॉस्ट कर दिया है, तो आप जो भी उसको हेल्प दे रहे हो उसको बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, राइट? तो क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं यार मैं तो अपने बच्चे को थपथपाती ही रहती हूँ, मेरे बच्चे तो 1 घंटा लगाता है सोने के लिए, या तो मैं तो आधे घंटे तक फीड ही कर रही हूँ मेरे बच्चे को, राइट? पर उसमें अगर आप अवेक विंडोज इसे बोलते हैं, जो ये मैं बोल रही हूँ कि 60 to 90 minutes विच इज़ बिटवीन 0 to 3 months, अगर आप अवेक विंडोज फॉलो करते हैं और आप आपके बच्चे को वो टाइम पे सुलाने ले जाते हैं, तो क्या होता है, आप बच्चे को हेल्प करो सोने के लिए, पर जो आप हेल्प दे रहे हो वो बच्चे को इतनी नहीं लगेगी, क्योंकि बच्चा ओवर टायर्ड नहीं है, वो अपने स्लीप हैबिटेट में है ऑलरेडी, आपने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, वो बच्चा सो रहा है तो बच्चा अच्छे से सो जाएगा और उसमें वो अपनी नैप भी पूरा अच्छे से लेगा.
मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि 1 hour to 1.5 hours मैक्सिमम बच्चे को जगा के रखना चाहिए. ज़बरदस्ती खेलने के लिए एक्स्ट्रा मतलब मालिश वालिश हुआ है अभी, मतलब 1 घंटा मालिश ही हो जाता है,
राइट?
उसके बाद फिर नहलाना, फिर दूध पिलाना,
राइट?
फिर बर्प कराना, मतलब दुनिया सब कुछ करते ज़्यादा आप कर दोगे, हाँ. फिर ओवर स्टिम्युलेट हो जाते हैं, तो उसको सुलाने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, एंड दैट एक्स्ट्रा एफर्ट बिकम्स द हैबिट,
राइट? और ये जो मैं अवेक विंडोज बोल रही हूँ, वो एज अपना बच्चा ग्रो हो रहा है वो चेंज होती जाती है. अंडर 4 months होएगी 60 to 90 minutes, 4 to 6 months हो जाता है 1 hour to 2 hours, 6 to 9 months इंक्रीज होता है. आपकी डॉटर 2 year old की है तो 2 year old विल हैव एन अवेक विंडो ऑफ लाइक 4 hours and 5 hours, यू नो, तो वैसे वो चेंज करता जाता है बिकॉज वो भी ग्रो हो रहे हैं, तो उनकी स्लीप नीड्स भी चेंज होती है. बट एट दी एंड ऑफ इट मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ. 9 month old, ठीक है, 9 month old जो एक 2 nap स्केड्यूल पे है, ठीक है, सो 9 month old नीड्स 3 hours ऑफ डे टाइम स्लीप, 11 hours ऑफ नाइट टाइम स्लीप, ठीक है, तो वो हमारे हो गए 14 hours. ओके, नाउ 24 minus वी आर डूइंग 14, ओके, सो वी हैव अबाउट 10 hours. सो 10 hours इज वॉट योर चाइल्ड नीड्स टू बी अवेक बिटवीन द नैप्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा दिन लगेगा दिन कि यू नो बच्चा उठा है सुबह, फिर 2 या 2.5 घंटे बाद बच्चा सोया है, फिर उसके बाद 3 घंटे बाद बच्चा दूसरी नैप ले रहा है, फिर 3.5 या 4 घंटे बाद आपका बच्चा बेड टाइम पे गया. वो जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें अगर हमने कैलकुलेट करी और हमारा 24 hours हुआ, तो आपका पूरा दिन होगा. अगर आपने बच्चे को 11 घंटे जगा के रखा, यू नो, क्योंकि कोई भी चीज़ें हुई और आप स्केड्यूल पे नहीं हो, और आपका बच्चा 3 या 4 घंटे दिन में सोया, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका बच्चा रात को 8-9 बजे सोएगा नहीं, सबसे पहली बात. और अगर सो भी गया तो, पर हम दिन तो हमारा खाली 24 hours है, तो उसमें क्या होगा, वो बच्चा रात को शायद उठ जाएगा क्योंकि वो दिन में ज़्यादा सोया है, या फिर वो जल्दी सुबह 5 बजे उठ जाएगा क्योंकि उसकी नींद तो ख़त्म हो गई, वो तो अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से चल रहा है.
सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, एकदम जो न्यू बॉर्न का है, तो उसमें जो आपने पैटर्न बोला 1.5-1.5 घंटे का, ये 1.5-1.5 घंटे का पैटर्न रात को भी होना चाहिए?
नहीं, रात को तो उनको लॉन्गर स्ट्रेचेज ऑफ स्लीप होंगी. रात को आपका फीडिंग स्केड्यूल एट दैट एज क्या होता है, 2.5 to 3 hours होता है, डिपेंडिंग ऑन योर बेबीज वेट एंड योर पीडियाट्रिशियंस एडवाइस, राइट? अगर आप पूरे दिन में, तो अगर आप पूरे दिन में 1.5-1.5 घंटे में अगर बच्चे को सुला रहे हो, आपकी 5 to 6 naps होती है, ठीक है, उसमें 1-1 घंटे भी हो गए तो बच्चे ने 6 घंटे आराम से सो लिए दिन में, राइट? क्योंकि वो टाइम पे तो बेबी बहुत छोटा होता है, आप शायद कॉन्टैक्ट नैप कर रहे हो, शायद बेबी फीड करते करते सो जाता है, तो वो टाइम पे जितना बच्चा सोएगा इट्स मच बेटर, बिकॉज स्लीप ऑल्सो हेल्प्स इन योर ब्रेन डेवलपमेंट. हम भी ओवर टायर्ड होते हैं, हम नहीं काम कर पाते, राइट? तो अगर हम बच्चे को ओवर टायर्ड कर देंगे तो बच्चा कैसे काम करेगा, यू नो?
बट रात का जो स्लीप होता है, जो कि बहुत मतलब डिस्टर्ब
right.
बोलते हैं कि घड़ी घड़ी उठते हैं, दूध पीते हैं, सोते हैं, मतलब ऐसा लगता है भूख खत्म ही नहीं हो रहा है. तो उसके लिए मतलब हाउ टू पुट दैट स्लीप इनटू अ प्रॉपर पैटर्न,
राइट? सो देबीना, लेट मी टेल यू, जब हम स्केड्यूल की बात करते हैं, लाइक आई सेड, हमारा डे और नाइट इंटर रिलेटेड है, ठीक है. तो अगर हमारा बच्चा दिन में बहुत ज़्यादा सो रहा है, एंड आई एम श्योर अगर हमें लंबी नैप्स मिलती है तो हमें लगता है यार सोने रहे बच्चे को, हमें भी थोड़ा टाइम मिल रहा है. पर अगर आपका बच्चा दिन में 3-4 घंटे सो रहा है और आपको रात को आपका बच्चा उठ के यू नो बच्चे को खेलना है या बच्चे को मतलब लाइक पार्टी करनी है, लाइक बेसिकली बच्चा लाइक यू नो गेटिंग अप फॉर अ पार्टी, तो मतलब यू हैव टू लुक एट आपके दिन में क्या हो रहा है. हम क्या करते हैं, हम रात पे इतना फोकस करते हैं कि हम दिन को कैसे भी जाने देते हैं. तो अगर आपका बच्चा 4 घंटे सो रहा है और आपका बच्चा रात को उठ रहा है और 1-1.5 घंटा लग रहा है उसको वापस सुलाने के लिए, आपको आपके दिन को देखना पड़ेगा कि शायद मेरे बच्चे को अब 4 घंटे की नींद की ज़रूरत नहीं है, शायद उसको 1/2 घंटा मैं कम करूँ उसकी नींद और देखूँ मेरी रात कैसे जाती है. राइट. कितनी बार क्या होता है, बिकॉज हमारा डे स्केड्यूल इतना हैपजार्ड होता है कि बेड टाइम पे बच्चा बहुत ओवर स्टिमुलेटेड होता है या ओवर टायर्ड होता है. लाइक आई सेड, अगर आप वो 11 घंटे की नींद कैलकुलेट करके उनको नहीं सुला रहे हो तो वो बच्चा और टायर्ड होएगा. तो अगर आप कोई भी हैबिट है, अगर हम उनको रॉक कर रहे हैं, पैट कर रहे हैं, लेट मी टेल यू कोई तरीका गलत नहीं है, मदरहुड में कुछ गलत नहीं है, इट्स ऑल अ जर्नी. राइट. तो हम जो भी कर रहे हैं वो अल्टीमेटली इट्स लाइक अ कंबाइंड डिसीजन. आज अगर आपने रॉकिंग डिसाइड किया है, क्योंकि एट सम पॉइंट इन टाइम वो बच्चे के लिए और आपके लिए सबके लिए काम कर रहा है. राइट. पर क्या होता है, जब हमारा स्केड्यूल जाता है, वो बच्चा भी बढ़ रहा होता है, तो सडनली वो रॉकिंग हम 1-1.5 घंटा कर रहे हैं, 1.5-1.5 घंटा कर रहे हैं, जब बच्चा उठा तब थप थप आ रहे. कितनी बार तो होता है कि मतलब कुछ सोचा भी नहीं और ऐसे ही हाथ चल रहा है, यू नो लाइक द चाइल्ड इज नॉट इवन अवेक. सो व्हेन यू आर डूइंग दैट नाइट स्लीप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी स्टार्ट वर्किंग ऑन हाउ वी एक्चुअली अडेप्ट टू पुट टू स्लीप.
सो आई हैव अ क्वेश्चन. मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो मतलब मेरे पास मुझे सुनने को मिलता है कि जब भी मैं मेरे बच्चे को सुलाती हूँ मेरे गोदी में, और कभी कभी मतलब जब स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था काफ़ी टाइम गोदी में ही सोई रहती थी, अभी भी एक्चुअली जब मेरे पास टाइम है आई एम एट होम बिकॉज आई एम अ वर्किंग मॉम, हमेशा मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो जब मुझे टाइम होता है मैं ना उसको गोदी में सुला के रखती हूँ एंड आई फील गुड अबाउट इट. तो मुझे बोला जाता है कि वो गोदी में सोने की आदत बन जाएगी, सो पुट हर डाउन टू स्लीप. और एकदम छोटे से ही बोलते थे कि मतलब उसको बंगाली में कोलघुम बोलते हैं, कि गोदी वाला सोना, तो उसको फिर ना लेट के नींद नहीं आती है बच्चों को, तो उसको उस चीज़ की आदत हो जाती है. मतलब आई वॉन्ट टू नो द राइट एंड रॉन्ग ऑफ इट.
राइट. सो देबीना, लेट मी टेल यू कि एक तो इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, ठीक है, एज लॉन्ग एज जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे लिए हम कर सकते हैं एज अ पेरेंट्स, हम हमारे बच्चे को सुला रहे, दैट्स द राइट थिंग टू डू. बट ऑल्सो जब हम स्लीप का करते हैं, आपने आपके बच्चों को इंडिपेंडेंटली खाना सिखाया, आपने आई एम श्योर लाइक यू नो यू आर अडेप्टिंग टू लाइक अ बेबी लेड वीनिंग, हम उन्हें चलना सिखाते हैं, पर स्लीप में हम नहीं करते. हम सोचते हैं कि हमें उन्हें एंड तक सपोर्ट करना है. राइट. हम उन्हें ट्रस्ट ही नहीं करते. जैसे अगर वो चलना सीख रहे हैं बोलेंगे कोई बात नहीं थोड़ा गिरेगी चलेगा, पर स्लीप में हम नहीं करते. वॉट इज़ द राइट वे इज़ दैट हमें इंडिपेंडेंट स्लीप एस्टैब्लिश करनी चाहिए बच्चे के लिए. क्यों? क्योंकि हम जब उन्हें डिपेंडेंस दे रहे हैं, हम टच दे रहे हैं, दैट इज़ द वॉर्म्थ. बट डू दे नीड दैट एंटायर वॉर्म टू कम्प्लीटली फॉल अ स्लीप? आई डोंट रियली थिंक दैट दे शुड बी डूइंग दैट, बिकॉज जब वो अपने आप सोएंगे तो वो रात को उनकी जो वेकअप्स होती है, क्योंकि अगर वो बच्चा आपकी गोद में सोया है और फिर आपने उसको बेड पे रख दिया, अब बच्चा सोया कहाँ? आपकी गोद में, ठीक है. अब बच्चा जब अपनी लाइट स्लीप साइकिल में आया और बच्चा उठा तो वो कहाँ था? वो बेड पे था, वो वहाँ नहीं था जहाँ वो सोया. तो ऑब्वियसली वो रात को उठ के क्या मांगेगा कि मुझे मम्मा की गोदी में वापस जाना है. हम एज अडल्ट्स भी, हमारे कभी कोई किसी को आदत होती है पेट पे सोने की कि कोई पर्टिकुलर वे में सोने की, हम भी रात को उठते हैं और हमारे अपने आप को खुद वो पोजीशन में रख के वापस सो जाते हैं. अब क्योंकि हमारी स्लीप साइकिल लंबी हो गई है और डेवलप हो गई है, हम अपने आप को वो सबकॉन्शियसली कर लेते हैं और हम सो जाते हैं, पर बच्चों की स्लीप साइकिल डेवलप हो रही है. तो जब हमें कोई ट्रांजिट करता है तो हम भी थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि अरे हम कहाँ आ गए, तो वो तो छोटा सा बच्चा है. तो जब हम बच्चे को आप बेड पे अगर रख के सुला रहे हो या क्रिब में सुला रहे हो, तो उन्हें इंडिपेंडेंट स्लीप एस्टैब्लिश इसलिए करनी पड़ती है तो उनकी जो लाइट स्लीप साइकिल होती है वो घड़ी घड़ी वो सपोर्ट के लिए ना देखे, तो उनकी लाइट स्लीप साइकिल डेवलप हो जाती है.
सो वेयर यू विल अल्टीमेटली पुट द बेबी टू स्लीप, आप वहीं पे सुलाने की
राइट
मतलब बिगिनिंग
वहीं से करनी चाहिए. हमें कडल करना है, हमें हग करना है, एंड दैट इज ऑल अ वेरी बिग प्रोसेस ऑफ योर बेड टाइम रूटीन. आई मीन मैं बहुत ही एडवोकेट करती हूँ, मेरी खुद की 6 साल की बच्ची है तो मैं खुद बहुत एडवोकेट करती हूँ, द अटैचमेंट इज अ वेरी बिग वे टू गो. हम कडल करें, हम उन्हें होल्ड करें, हम उन्हें गुड नाइट किसेस दे, पर उसके बाद अगर उसको पैटिंग की भी आदत है तो आप 5 बार पैट करो, ओके मैंने आपको पैट कर लिया है. उनकी पूरी नीड्स हमें मीट करनी चाहिए, कडल की, बातें करने की, पैट करने की. उसके बाद ये गुड नाइट टाइम है, मैंने आपको बेड पे रखा है, नाउ इट इज़ वेयर वी हैव टू होल्ड अ बाउंड्री. मैंने सब कर दिया है, अब आपको सोना है और मैं यहीं हूँ.
हाउ ब्यूटिफुल, मुझे अभी एक्चुअली समझ में आ रहा है आपने जो बोला दैट रिलेशन बिटवीन यू नो वॉकिंग एंड स्लीपिंग. वॉक किंग करने के लिए हम उसको छोड़ते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, चाहे वो गिरे फॉल्टर करे, थोड़ी देर के बाद वो खुद वॉक करना सीख जाएगी.
राइट.
पर इधर हम लोग तब तक करते रहते हैं जब तक मतलब जैसे चम्मच से घोल के पिला के पेट के अंदर भी गया कि नहीं,
डाइजेशन हुआ कि नहीं, तब तक हम देखेंगे, यू नो लिटरली लाइक दैट.
ओके, ओ माय गॉड, अ वेरी बिग थिंग, मतलब एक क्लैरिटी हुई. आई विल ट्राई टू डू दैट कि बेड पे अगर मुझे सुलाना है तो मैं बेड पे स्टार्ट भी वहीं से करूंगी, नॉट फ्रॉम अ शोल्डर और हियर देयर लैप.
व्हाटएवर वन थिंग इज दैट यू नीड टू डिसाइड दैट व्हाट आई वांट टू डू. सो यू नो व्हाट हैपेंस इज हम कुछ आदतें कर लेते हैं, फिर थोड़े महीने बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमें नहीं करनी वो आदतें. पॉसिबली अगर आप रॉकिंग कर रहे हो तो रॉकिंग बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. कितनी बार होती है मदर्स उनकी कमर टूट जाती है, बोलती है मतलब यू नो देयर लाइक कमर टूट गई है मेरी, अभी नहीं कर सकती. उस टाइम पे एक इट्स अ कंबाइंड डिसीजन, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट स्लीप बोल रहे हैं वो खाली बच्चे के लिए नहीं, हमें भी हमारी आदत बदलनी है.
जी जी,
तो वो टाइम पे यू हैव टू एस्टैब्लिश कि हमें क्या करना है.
कमर मेरा भी टूटा ही हुआ है बिकॉज मुझे कंधे पे सुलाने की आदत हो गई है, तो बीच बीच में उठ के उसको वापस क्लाइंब करके कंधे पे चढ़ जाना है.
राइट.
तो आधी रात को उठ के मैं कंधे पे लेके घूमती हूँ.
राइट.
तो नाउ आई गॉट माई ओन आंसर दैट मैंने उसको कंधे पे सुलाया, मैंने उसको एस्टैब्लिश किया कि ये है तुम्हारा पोजीशन सोने का.
Right.
और जब वो उठ रही है वो देख रही है वो बेड पे है,
बराबर,
तो ऑब्वियसली शी इज कमिंग एंड क्लाइंबिंग ऑन माई शोल्डर.
अग्री.
सो द मिस्टेक इज माइन, आई एडमिट एंड आई विल चेंज. थैंक यू सो मच. अगेन अनादर क्वेश्चन, वॉट इज द राइट वे टू पुट बेबी ऑफ टू स्लीप. कोई लोग रॉक करते, कोई लोग पैट करते हैं, और कोई गाना चला के सुलाते हैं, लोरी सुनाते हैं, और कोई ऐसे ही छोड़ देते हैं. लाइक स्पेशली आउट ऑफ इंडिया लोग बोलते हैं गो टू स्लीप, मतलब ऐसे कवर चढ़ा दिया ऊपर और किसी कर दिया एंड द बेबी इज सीन टू बी गोइंग ऑफ टू स्लीप ऑल बाय देमसेल्व्स. सो व्हिच इज द राइट वे टू डू.
सो When we are talking, जब हम हमारी गुड स्लीप कर रहे हैं और उसमें राइट वे है ना, हमारा 40% जो हमारी अच्छी नींद है बच्चे की वो डिपेंड करती है हम बच्चे को कैसे सुला रहे हैं. ओके, 60% हमारा स्केड्यूल हो गया, पर हर बच्चा स्केड्यूल से अच्छे से नहीं सोता है. 40% होती है कि हम बच्चे को कैसे सुला रहे हैं. कुछ बच्चों को हम वो जो आदत डाल रहे हैं रॉकिंग की और पैटिंग की, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं वो सेल कर जाते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रॉक कर रही हूँ 5 मिनट रॉक कर रही हूँ बच्चा सो रहा है, दैट्स ओके. हमें जब चेंज क्या करना है, वो 40% जब हम बच्चे को अपने आप सुलाना सिखा रहे हैं, तो जब हम इंडिपेंडेंट स्लीप करते हैं, आपने बहुत सही कहा कि अब्रॉड में ये प्रैक्टिस करते हैं और अब यहाँ इंडिया में भी करते हैं, एंड दैट इज़ वॉट आई वर्क ऑल्सो वर्क विद द पेरेंट्स कि यू नीड टू इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट स्लीप, तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है, ये जो कनेक्टिंग स्लीप साइकिल्स, वो नहीं आएगी. इसमें बहुत सारी जेंटल वेज हैं जो वेस्टर्न साइड में ज़्यादातर फॉलो करते हैं, वो है क्राइट आउट मेथड, जिसमें
विदेशों में एक्चुअली बच्चों को ऐसे ही छोड़ा जाता है सोने के लिए, वो खुद रो रो के मतलब आदत डाल लेते खुद right. में कि मुझे खुद को ही सोना है. बट हम लोग ऑब्वियसली हमारे बच्चों को मतलब रोते हुए छोड़ नहीं सकते right. हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए भी देख नहीं सकते, तो मतलब हम तो एंड तक देखते हैं कि एकदम सो गए कि नहीं, तो पीछे जाके मुड़ के देखते हिल के कि
right.
सोए कि नहीं. तो वहाँ पे रो के सुलाना तो इट इज़ नॉट इन आवर डिक्शनरी. सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट वे टू पुट देम टू, मतलब गेट द राइट मेथड.
राइट द मेथड. सो देबीना, देयर आर दीज जेंटल मेथड्स विच, व्हेन वी टॉक अबाउट जेंटल मेथड्स, it starts with parental presence. Okay, first thing, let me tell you that children don't have concept of time. I mean, meri bachchi 6 saal ki hai, usko bhi abhi tak 5 minute aur 10 minute ka farak nahi pata hai. So we don't really need to sit with a stopwatch to teach our child anything. What they relate is, they relate our actions and our reactions. Like, अगर हम उसको rocking patting कर रहे हैं, क्योंकि जब वो बच्चा रोया, आपने बच्चे को या तो उठा के feed करा, या आपने बच्चे को उठा के rock किया हर बार, और वैसे ही सुलाया. तो अब अगर बच्चा उठ के वही चीज़ मांग रहा है, क्योंकि आपने वही response दिया था. राइट कभी होता है सुबह 5 बजे उठ के हम बोलते हैं, अरे मेरा बच्चा सुबह 5 बजे आया है तो मैंने अपने बच्चे को मेरे बेड में ले लिया, पर वैसे तो वो रात को अपने आप सो जाता है. बच्चे को नहीं पता कि वो 5 बजे उठा है इसलिए वो उसको मामा पापा के बेड में आने मिला, पर उसको लगता है कि मैं उठूंगा तो मुझे यहाँ आने मिला. तो इट इज़ रिलेटिंग एक्शंस एंड रिएक्शंस, हम क्या उनको रिस्पॉन्ड करें. जेंटल मेथड्स में इट इज़ मोर एम्फोसिस ऑन दैट. हमें क्या करना है जेंटल मेथड्स में, कि अगर आप कोई भी तरीका अपना रहे हो, आप अगर रॉक भी कर रहे हो, तो जैसे मैंने कहा आपको 2 मिनट आप रॉक, आप डिसाइड करो कि मैं उसको खाली 10 बार रॉक करूँगी, मैं उसको रॉक करूँगी, फिर मैं उसको नीचे रख दूँगी, फिर उसके बाद मैंने गुड नाइट विश कर दिया और मैं वहीं बैठी हूँ, मेरी बच्ची रोएगी. एंड हाँ, इसमें ऐसे कोई नो क्राई मेथड है ही नहीं, क्योंकि जब भी बच्चे को हम कुछ चेंज करेंगे, बच्चा रो के ही हमें कम्युनिकेट करता है. अगर बच्चा रोया, हम उसे कंफर्ट करेंगे, और उसके लिए हमें कोई 3 मिनट या 5 मिनट रुकने की ज़रूरत नहीं है. आप खाली 20 से 30 सेकंड का पॉज करोगे ना, तो भी बहुत इनफ है. पर इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी. हम एक दिन ये मेथड करके नहीं सोच सकते चलो आज मैंने ये सुन लिया है, आज मैं ये करूँगी, बच्चा रोया मैंने छोड़ दिया कि नहीं ये तुम हमसे तो नहीं होने वाला. आपको एवरी डे शो अप करना है, एवरी डे. आप सिर्फ 1 घंटे के लिए ये पूरा एक मेथड बाउंड्रीज के साथ फॉलो कीजिए कि ओके, मैंने ये बेड टाइम रूटीन कर दिया है, उसके बाद मैं अपने बच्चे को बेड पे रखूंगी, या मैं अपने बच्चे को क्रिब में रखने वाली हूँ. अगर आप एक सेपरेट रूम सेटअप में है तो मैं अपने बच्चे को उसके रूम में रखूंगी, मैं गुड नाइट विश करके वहीं बैठूंगी, मेरा बच्चा रोएगा, मैं एक कम्फर्ट ऑफर करूंगी, ये कम्फर्ट मैं पैट करके कर रही हूँ या उसको होल्ड करके कर रही हूँ. वो आपको अपनी बाउंड्री डिसाइड करनी है. जैसे बच्चे ने रोना बंद किया, आपको वापस बच्चे को बेड पे डालना है. हम क्या करते हैं, हम बच्चे को डालते नहीं हैं
जब तक सोना
सोना जाए. बच्चा रोया, नहीं 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 ये तो अभी काम नहीं करने वाला, मुझे बच्चे को सुला देने दो. राइट, पर हमें बच्चे को हमने कंफर्ट किया, बच्चे की नीड थी कंफर्ट, हमने वो नीड मीट कर ली है. वो नीड मीट करने के बाद हमें बच्चे को वापस बेड पे रखना है, फिर हमें वहाँ रूम में बैठना है, और हमें ये अपने आप को बोलना है कि मैं यहीं हूँ. बच्चा वापस रोएगा. पहले 2-3 दिन जब आप कर रहे होंगे ना, बच्चा सिर्फ 10-20 सेकंड जो आप वो वेट कर रहे हो तभी बच्चा अंदर रहेगा. पर जैसे जैसे आप रोज़ ये रिस्पॉन्स करोगे, हमें बच्चे को क्या सिखाना है, जब आप रोओगे मम्मा या पापा आके आपको पिकअप करेंगे, आपको कम्फर्ट करेंगे, पर जब आपका सोने का टाइम है आप आपके बेड पर वापस जाओगे. अब हम ये इतना बोरिंगली करते हैं क्योंकि हम कुछ और नहीं कर रहे, तब हमने हमारी बाउंड्रीज डिसाइड कर ली है कि हम यही करने वाले. जब आप इसकी कंसिस्टेंसी करोगे 10 दिन 15 दिन, तब आपको रियलाइज होगा, क्योंकि बच्चे को तब पता पड़ेगा कि मम्मा पापा अब मजाक नहीं कर रहे, कि वो जो बोल रहे हैं वो यही कर रहे हैं. एंड दैट इज समवेयर वे यू आर जेंटल, वे यू कैन वर्क ऑन कीप चेंजिंग द मेथड ऑफ हाउ यू आर पुटिंग योर चाइल्ड टू स्लीप.
मैं सुनते सुनते इतनी इंग्रॉस्ड हो गई थी, आई ऑलमोस्ट विजुअलाइज्ड माय सेल्फ डूइंग इट.
डूइंग दैट,
या सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टूड दैट आई विल बी फिजिकली प्रेजेंट, आई विल बी मतलब विथ माय टच एंड फील आल्सो बी प्रेजेंट जब उसको जरूरत पड़ेगी, बट शी हैज टू स्लीप ऑल बाय हरसेल्फ.
राइट,
बट कभी कभी ये लंबा टाइम भी ले सकता है.
राइट,
सुसु पॉटी ट्रेनिंग के लिए हम लोग एकदम मन ठानते हैं, करते ही है, तो इसमें हम लोग क्यों नहीं करेंगे. हम लोग मतलब 10 दिन टाइम लगेगा, 15 दिन टाइम लगेगा, बट ये आदत हो जाएगी. आई काइंड ऑफ रिलेटेड टू इट बिकॉज लिटिल बिट. थोड़े दिन पहले दिविशा को, मेरी छोटी बेटी को, उसको आदत हो गई थी रात को आधी रात को उठ के कंधे पे चढ़ना नहीं, उसको बाहर जाना था.
राइट,
सो आई हैज टू एक्चुअली टेक हर आउट एंड गो फॉर अ वॉक, एंड इवन देन शी यूज टू से बाहर बाहर, she's just there's some discomfort, but usko nahi, main usko room se bahar jana
hai. Right,
main 2-3 din room se bahar ghumai, phir mujhe laga ki I mean maybe that's not what she's looking for, and every day it cannot become a pattern. It's not practical ki main raat ko kamre se bhi bahar jaake ghum rahi hu.
Right,
so my sleep is going for a toss completely. To just the other day, I mean it was 5-6 days back, वो उठ के वही बाहर बाहर कर रही थी और मैंने उसको उठाया ही नहीं. मैं लेट के बात कर रही थी कि मम्मा विल नॉट टेक यू आउटसाइड, यू विल हैव टू स्लीप हियर.
राइट,
सो इट वॉज लाइक अ कॉन्वर्सेशन. वो क्राई करके बोल रही थी और मैं लेटे लेटे ही बोल रही थी. सो गुरमीत इन द मॉर्निंग इज माई हस्बैंड, ही सेड दैट रात को तो ये लोग झगड़ा कर रहे थे, मतलब प्रॉपर मतलब गिव एंड टेक हो रहा था, बाहर जाना है नहीं मैं लेके जाऊंगी. एंड देन अल्टीमेटली शी वेंट ऑफ टू स्लीप आफ्टर लाइक अ वन आवर कॉन्वर्सेशन. शी वेंट ऑफ टू स्लीप एंड दैट डे, आफ्टर दैट डे शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो आउट. वन डे आई हैड टू लाइक, मतलब होता ना दिल में पत्थर रख के मैं लेटी रही और मैं बोलती रही कि आई एम नॉट टेकिंग यू आउट. बच्चा आई वॉज रेस्पॉन्डिंग टू हर, नॉट दैट आई वॉज मतलब एकदम साउंड स्लीप पे मैं चुप नहीं थी. एवरी टाइम शी वॉज क्राइंग आई वॉज रेस्पॉन्डिंग, बट आई वॉज वेरी क्लियर दैट दिस कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर. सो इफ वी वॉन्ट वी कैन चेंज एंड वी कैन मेक दैट चेंज एनी टाइम.
ऑफकोर्स एंड देबीना दैट इज वॉट इन यू नो इन द स्लीप कंसल्टिंग वॉट वी कॉल्ड इज इन द स्लीप साइंस ऑल्सो वी कॉल्ड इज एट फॉर्मिंग लविंग बाउंड्रीज. ओके, वी हैव टू ले आउट आर एक्सपेक्टेशंस कि हम क्या करने वाले हैं. लाइक यू सेड कि अगर रात को उठ के जैसे आपने अपनी यू पुट योर फुट डाउन कि नहीं ये नहीं होना है ये कॉन्वर्जेशन. आई विल गिव यू अनदर टिप. जब हम कुछ भी हमारे बच्चे की लाइफ में रात को चेंज कर रहे हैं, बेड टाइम रूटीन चेंज कर रहे हैं, या सपोज आप आज डिसाइड कर रहे हो कि आज से मैं उसको पैट नहीं करूँगी, उसको बेड पर रखूँगी और मैं वहीं बैठूँगी, बट आपको ये डिस्कशन उसके साथ दिन में करना पड़ेगा. यू विल हैव टू मेक हर अ पार्ट ऑफ योर प्लान. And especially your children who are, you know, like as a toddler age, 1 and 2 years old, okay? We cannot just suddenly change things for them. They don't like, they are perfectionist. Unko bilkul change to matlab unko overwhelm kar deta hai. You have to discuss with them during the day. Tell them what
we are
going to...
We have to treat them as adults.
Of course. And they are more perfectionist. I mean, hame kabhi koi cheez yahan se wahan chalegi. But if you have been giving your child a spoon and giving dal chawal separate, the child will try, you know, that mixing sometimes is also a... issue for them because they are not comfortable with what they are not used to. And at night they are so used to because that is something you're doing for months. So when you're changing it, you have to tell them. हमें action and मतलब हमारा action और reactions को जब हम करते हैं, इसमें एक बहुत छोटी सी बात है. अगर हम दिन में वो language नहीं बात कर रहे हैं तो रात में हम कितना भी हमारी boundary hold कर ले वो बच्चा नहीं समझने वाला.
सो विद अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वी हैड अ डिस्कशन कि रात को सोने से पहले अगर वो जो कॉन्वर्सेशन होता है बच्चों के साथ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पैक्टफुल. उन लोगों के दिमाग में मतलब अच्छे से घुस जाता है. दिन में काफ़ी स्टिम्यूलेटेड रहते हैं तो उनके दिमाग में अक्सर नहीं जाता है. तो डू यू थिंक जस्ट बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप वो जो हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं रीडिंग, टॉकिंग, कम्युनिकेटिंग, टॉकिंग वॉट एवर हैज हैपेंड थ्रू आउट, वो टाइम सही होगा?
यस. तो ज्यूरिंग बेड टाइम है, पर अगर आप उसका चेंज कर रहे हो, आप बच्चे को कैसे सुला रहे हो वो चेंज कर रहे हो, वो डिस्कशन आपको दिन में बच्चे के साथ करना है. और दिन में ऐसे नहीं कि मैंने एक बार बच्चे को बोल दिया ठीक है, नहीं. आप जब बच्चा सुबह उठा है, आप बच्चे को उसका डे लेड आउट बताइए. आज हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, फिर आप पार्क जाने वाले हो, फिर आप सोने वाले हो. पार्क जाने के पहले आप अभी पार्क जा रहे हो, उसके बाद आप आके सोओगे, ठीक है. शाम को आप उसके साथ बैठे हो, आज से मम्मा, या आप एक कोई चार्ट बना सकते हो, बोलो कि फ्राइडे से हम ये करने वाले हैं, आप अब बड़े हो गए हो और आज से मम्मा यहीं बैठेगी और आप यहाँ सोओगे. मैं आपको सुलाऊंगी पर मैं मम्मा यहीं बैठेगी. आप उसके साथ उसका कंसेंसस लोगे, उसको एक टीम में पूरा एक पार्ट बनाओगे ये प्लान में कि मैं ये दिन से ये करने वाली हूँ. और जब आप पूरे दिन में आपके एक्शंस आप बोल रहे हो कि मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, फिर मैं ये कर रही हूँ, जब आप पूरे दिन जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, तो रात में आप जो बोल रहे हो बच्चा जानता है कि वो ही मम्मा करेगी. अगर हम दिन में बच्चे को बोल रहे हैं अगर तुमने खाना नहीं खाया तो खाना बस ख़त्म, ठीक है, इसके बाद नहीं मिलेगा, बच्चा तो बच्चा है, वो सबसे पहले नहीं खाएगा, वो अपने सबसे पहले बाउंड्री ब्रेक करेगा. हम क्या करते हैं, हम बोल लेते हैं, बच्चे को टॉयज़ वॉयज़ के साथ खाना खिला देते हैं. बच्चे ने क्या समझा, मेरे पास दूसरा रास्ता है, कुछ नहीं हो रहा यहाँ. अब आप सोच रहे हो कि रात को आप बोलोगे कि मैं यहीं बैठी हूँ तुम सो जाओ, बच्चा बोलेगा मुझे पता है ये कुछ नहीं चलता. बच्चा रोएगा, आपका थ्रेशोल्ड ब्रेक हो जाएगा और आप सडनली आप उसको वो ब्रेक कर दोगे. पर अगर हम पूरे दिन वही लैंग्वेज बात कर रहे हैं, और इसमें कोई बड़ी नहीं है, जो चीज़ें हम करते हैं ना हमें खाली वो बच्चे को बोलते रहनी है, वो हम कर रहे हैं, तो क्या होएगा, आपने बोला मैं यहीं हूँ, बच्चा आपने बच्चे को टच भी नहीं किया है, आप वहीं बैठे हो, वो प्रेजेंस पे आपने बच्चे के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड किया है, क्योंकि पूरे दिन आपने बच्चे को एक भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं दिए, आपने बच्चे को एक ट्रस्ट बिल्ड करके रखा है.
मैं एक ऐसी प्रैक्टिकल ये पूछ रही हूँ, सपोजिंग आई एम सिटिंग ऑन द बेड एंड शी इज लाइंग देयर, वो अगर खुद क्लाइंब करके आके मेरे ऊपर चढ़ जा रही है तो फिर मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में?
इसमें अगर वो आपके पास आई, आप उसको हग दोगे और आप उसको बोलोगे मम्मा यहीं है, और आप उसको वापस सुला दोगे. ये एक बहुत ही नॉन क्या बोलते हैं नॉन सोल्यूशन है कॉल सैंडविचिंग आ येस एंड नोज. ओके, तो अगर वो आपसे हग मांग रही है, आपने उसको एक हग दिया, ठीक है. अगर वो कुछ और मांग रही है लाइक गोइंग आउट ऑफ द रूम जैसे आपने बोला, तो आप उसको बोलेंगे हम रूम के बाहर सुबह जाएंगे पर अभी आप सो जाओ. तो आपने क्या किया, उसने जो रिक्वेस्ट किया आपने उसको बताया वो उसको कब मिलेगा, फॉलोड बाय उसको अभी क्या करना है, राइट. तो हमने एक ही सेंटेंस में यस भी बोला है, नो भी बोला है और यस भी बोला है, बट ऑल्सो गिविंग हर एन इंस्ट्रक्शन. यूजुअली जब बच्चा हमें कुछ मांगता है हम ये बोल देते हैं नहीं अभी नहीं कर सकते, चलो अभी ये कर लो, पर हम पहले हम नहीं बोल देते हैं. तो अगर आपने मुझे कुछ पूछा और मैंने आपको मना कर दिया, मैं एक्सप्लेन भी करूँगी ना, आप 5 सेकेंड तक आप सुनोगे नहीं क्योंकि आप यही अपने दिमाग में सोच रहे हो कि मैंने नो क्यों बोला. तो बच्चे को भी हम पहले बोलेंगे कि उसको वो कब मिलेगा, फिर हमारी एक्सपेक्टेशन उसके साथ क्या है. तो अगर वो आपके पास आ रही है आप उसको हग करोगे, हग, पर आप एक काउंट रखो कि मैं खाली उसको 10 सेकेंड्स के लिए क्विक हग दे रही हूँ. हग किया, देन टेला आप सोने का टाइम है, आप सो जाओ. और बहुत एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देबी ना, जब हम बच्चे को सुलाते हैं ना और बच्चा रोता है, हम बच्चे को बोल रहे हैं आप सो जाओ, सोने का टाइम है, पर कितनी बार क्या होता है ना हम बहुत कॉन्वर्जेशन करते हैं बच्चों के साथ. मतलब हम बोलेंगे अभी सोने का टाइम है, देखो आपने ये कर लिया, देखो आपने वो कर लिया, सो जाओ. सब चीज़ें मीन शायद सेम ही कर रही है पर बच्चे को नहीं पता कि सब चीज़ मीन सेम कर रही है बिकॉज दे कांट अंडरस्टैंड इतने सारे वर्ड्स अभी. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दो चीज़ें एक डिसाइड कर लो, बोलना कि आई एम राइट हियर, इट्स टाइम टू स्लीप, मैं यहीं हूँ अभी सो जाओ. जब आपने गुड नाइट बोल दिया उसके बाद आपको सिर्फ ये दो टाइप के बोरिंग सेंटेंसेस बोलने चाहिए.
अच्छा, बहुत ज्यादा बातचीत करके फिर मतलब वहां से एक यू नो कॉन्वर्सेशन
चालू हो जाता है. एंड ट्रस्ट मी, ये जब टॉडलर्स होते हैं इनको मतलब नींद आ सकती है आंख बंद करके, पर वो कॉन्वर्सेशन बंद नहीं होते उनके. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज दे ग्रो अप, जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनके साथ ये लविंग बाउंड्रीज होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट. एक्सपेक्टेशंस, कितनी बार होता है हम 10 बुक्स स्टोरी बुक्स पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चा बस बोलता जाता है ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, और हमारा माँ का दिल है यू नो, और अगर फादर भी कर रहे हैं तो बोले इसमें क्या हो गया, दो ही तो स्टोरी और मांग रही है पढ़ लो, राइट. पर हम नहीं रियलाइज कर रहे, बच्चा ये सोच रहा है कि मैं तो कुछ भी मांग सकता हूँ, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई ग्राउंड रूल्स नहीं है, तो हमें वो बाउंड्रीज ले डाउन करनी है. 2 स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे हम, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद मम्मा आपको हग करेगी. वो बेड टाइम रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कनेक्ट करता है आपको टू स्लीप.
वाओ, इट्स अ न्यू मी आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन. माय चिल्ड्रन विल सी अ न्यू मी टुनाइट. एक मुझे और एक चीज़ पूछनी है. नाउ माय टॉडलर्स दे गो टू स्कूल, 1 is 2.5 एंड द अदर 1 is 1.5. अभी स्कूल में स्कूल का टाइम काफ़ी धीरे 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 लंबा हो गया है. मतलब बहुत माएँ दे हैव ड्रॉप्ड द डे टाइम स्लीप,
राइट,
ताकि शाम को टाइम पे सो जाए. कुछ माएँ जैसे कि जिनमें मैं भी हूँ, आई हैव स्टिल नॉट ड्रॉप्ड द आफ्टरनून स्लीप बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, कि दोपहर को थोड़ी देर सो जाएंगे तो शाम को मतलब 7-7:30 बजे से क्रैंकी नहीं हो जाएंगे, सो दे विल हैव देयर डिनर एंड देन दे कैन गो ऑफ टू स्लीप बाय 8:39 एंड देन वेक अप बाय 8:30,
राइट,
7:38 वॉट डू यू थिंक इज द राइट एंड रॉन्ग एंड वेन इज द राइट टाइम टू ड्रॉप द आफ्टरनून नैप? इवेंचुअली तो होगा ही, पर वो कब है?
कब है? सो बिटवीन दिस एज ग्रुप 2.5 to 3.5-4 तक देर आर सम चिल्ड्रन ड्रॉप नैप अर्ली, सम चिल्ड्रन स्टिल नीड दैट नैप. ओके,
डू यू थिंक चिल्ड्रन ड्रॉप नैप्स और पेरेंट्स नैप ड्रॉप करने?
नाउ दिस इज अ वेरी ट्रिकी वन. इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो खुद अपना डेवलपमेंट दिखाते हैं, कुछ जैसे आपने बोला स्कूल के स्केड्यूल्स के हिसाब से हमें वो करना पड़ता है. इसमें जब हम अगर हम स्कूल के स्केड्यूल के हिसाब से कर रहे हैं तो उसमें हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना कि जो हमारा विल गो बैक टू द 24 आवर्स ऑफ द डे जिसमें है, तो जो हमारे बच्चे का अवेक टाइम है एट 2.5 दैट चाइल्ड नीड्स टू बी अवेक फॉर 10 to 11 आवर्स इन द डे विद दैट नैप. एक्चुअली राइट. एक घंटे की नींद भी बस हो गई. कितने बच्चे होते हैं वो 40 मिनट्स ही सोते हैं पर वो उनके लिए बेटर है. तो वो शाम को 5-6 बजे, क्योंकि अगर वो बच्चा 5-6 बजे सो गया कहीं पार्क जाते हुए के कहीं जाते हुए, तो फिर यू हैव हैड अ स्ट्रगल विद द नाइट. तो वो एक कैलकुलेशन उसमें भी होता है. बट वॉट यू आर ट्राइंग टू डू इज, अगर हम वो नैप रख रहे हैं तो एट दिस एज आप वो भले नैप 3 बजे करो, 4 बजे करो जब बच्चा स्कूल से वापस आ रहा है, पर वो नैप फिर आप 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की करो, सो दैट योर चाइल्ड इज, यू नो, शी इज़ नॉट ओवर टायर्ड एट बेड टाइम और आपको बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट ना करना पड़े. पर अगर आपने डिसाइड किया है कि नहीं ये नहीं फंक्शन कर रहा, अगर वो 4 बजे, अगर वो नैप देने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि यार भक्ति मैं नैप तो दे रही हूँ, वो सो भी जाती है, पर फिर मेरे को बेड टाइम में 2-2 घंटे लग रहे हैं, वो रात को 10 बजे के पहले सो ही नहीं पा रही है, तो आपको फिर जाके देखना पड़ेगा कि अगर मैं उसको नैप नहीं देती हूँ तो क्या मैं उसका अर्ली बेड टाइम कर सकती हूँ, डज इट वर्क फॉर मी एज अ फैमिली, बिकॉज इफ़ शी इज़ वेकिंग अप एट 7, कैन आई डू अ 7:30-8 o'clock बेड टाइम, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, तो फिर हमें एक अर्ली बेड टाइम करना चाहिए, बिकॉज तो हमारा टोटल वेक टाइम उसके साथ अच्छा रहेगा. क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेने लग जाते हैं सोने के लिए, एंड दैट इज़ आ क्यू जो हमारा क्वेश्चन है टू ड्रॉप द नैप, कि कैसे पता पड़ेगा अगर हमारा बच्चा दिन में सो रहा है और हमारा बेड टाइम बहुत लंबा लग रहा है, प्रोसेस इतना बड़ा हो रहा है, बच्चा बेड टाइम पुश कर रहा है 10 बजे 11 बजे, तो ऑफकोर्स हमें वो नैप को निकालना है. पर वो नैप को निकालने के पहले, एकदम तुरंत निकालने के पहले पहले अगर आप 2 घंटा बच्चा सो रहा है तो 1.5 करके देखो,
कटिंग
इट डाउन, बिकॉज समटाइम्स वो बच्चा इज नॉट येट रेडी, पर शायद वो दिन में ज़्यादा सो रहा है इसलिए वो बेड टाइम पुश हो रहा है.
और एक चीज़, बच्चे जब सोते हैं दोपहर को, मुझे तो लगता है मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट माँ हूँ, मैं तो शायद उठा भी दूँ, पर मेरी माँ है जो कि नानी, बिकम्स लाइक द केयरिंग, मोस्ट केयरिंग मदर. बट व्हेन द नानी इज़ अ मदर, शी वाज अ स्ट्रिक्ट मदर, बट व्हेन द नानी इज़ अ, नानी इज़ अ वेरी मतलब लविंग, मुझे उठाने ही नहीं देते हैं कि वो सो रहे, लेट हर वेक अप हर सेल्फ. सो वॉट इज़ द राइट एंड रॉन्ग इन दिस?
सो इसमें ये है कि
अगर मैं सोने देती हूँ ना, तो दे कैन स्लीप फॉर 2.5 hours, बट इफ आई वेक देम अप अर्ली तो थोड़े क्रैंकी रहते थोड़ी देर, तो व्हाट इज द मतलब यहाँ पे मुझे भी एक्चुअली शंका होता है कि ठीक किया कि नहीं मैंने उठा के, क्योंकि उठने के बाद तो आधा घंटा उसको रोने में जाता है.
बराबर. सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर वो 2.5 घंटा सोती है तो आपकी रात कैसे जा रही है? अगर वो रात को उठ रही है, घड़ी घड़ी उठ रही है सिर्फ वो स्लीप सपोर्ट के लिए, जैसे आप उसको सुला रहे हो, या वो एकदम वाइड अवेक है मिडल ऑफ द नाइट, तो आपको डेफिनेटली बच्चे की नैप को कट करना पड़ेगा, आपको उसको उठाना पड़ेगा. और कितनी बार हमें बच्चे को उठाना पड़ता है और क्यों? एक होता है हमारा बॉडी क्लॉक और एक होती है हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट. बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, राइट? तो कितनी बार क्या होता है कि कुछ आदतों के कारण, क्योंकि हम बच्चे को दोपहर में सोने की आदत है, हम बच्चे को सुला रहे हैं, बच्चा सो जाता है, वो भी थका हुआ है स्कूल से, ओवर स्टिमुलेटेड है, वो अपनी नैप पुल कर लेता है. बट नाउ वो जब उतना ज़्यादा सो रहा है तो वो रात को जग रहा है, तो हमें वो बॉडी क्लॉक शिफ्ट लाने के लिए हमें बच्चे को उठाना पड़ेगा. वो थोड़ा क्रैंकी होगा, पर उसके बाद आप जब बेड टाइम कर रहे हो, वो बेड टाइम को आप प्रॉपरली ऑन टाइम करोगे. एज अ थम रूल, 13 hours आफ्टर योर मॉर्निंग वेकअप. तो अगर 7 बजे आपका बच्चा उठता है तो 8 बजे आपका बेड टाइम होना चाहिए, मतलब 8 बजे बच्चा सो जाना चाहिए. उसके बीच में आप जब नैप रख रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारी अडल्ट्स को कभी दोपहर में सोने की आदत होती है, जब हम वो भी निकालने की कोशिश करते हैं,
हम नींद आती है,
हाँ. हम में भी नींद आती है, और हम भी जब कट करते हैं कि आज नहीं सोना, हम भी वो ग्रॉगी रहते हैं, हमें भी बहुत इरिटेशन मचती है. पर हम थोड़े दिन वो प्रैक्टिस करते हैं और फिर हमारी बॉडी यूज हो जाती है. बच्चों के लिए भी वो सेम होता है, हमें खाली थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें सोने देंगे तो वो हमें रात को पक्का जगाएंगे, क्योंकि वो उनका, क्योंकि उनका बॉडी क्लॉक है, उनने तो अपनी नींद पूरी कर ली. वो या तो कितने बार होता है सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि आई एम फ्रेश.
कौन से टाइम पे ब्रेन डेवलपमेंट सबसे अच्छा होता है, द अर्ली नाइट स्लीप और द आफ्टरनून स्लीप?
सो योर नाइट स्लीप, लाइक आई सेड, योर डे एंड नाइट बोथ आर इंटर रिलेटेड. सो योर ग्रोथ आर रिफ्लेक्टेड ऑन बोथ योर डे एंड नाइट स्लीप्स, एंड योर डे स्लीप, आपकी डे स्लीप का भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने बच्चा आपका जैसे लाइक 2.5 years पे होता है, अगर कुछ बच्चे नैप के लिए, ड्रॉप नैप के लिए रेडी नहीं है, या कितनी बार होता है बच्चा सडनली सोना बंद कर देता है, तो वो दिन की पूरी की सुबह की नैप निकाल देते हैं, डे की नैप, पर उसके सामने आप देखो कि आपका बच्चा बहुत चिड़चिड़ है, क्या हर चीज़ एक मेल्टडाउन में जा रहा है, कि आपका बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, आपको बहुत टाइम लग रहा है बच्चे को सुलाने के लिए, ये सब चीज़ें आपके बच्चे की, क्योंकि आपके बच्चे को अगर इनफ स्लीप नहीं मिली है तो बच्चा कैसे फ्रेश रहेगा, बच्चा कैसे अब्जॉर्ब करेगा, हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू बी लाइक प्ले एरिया में जाके एक अच्छे से रहने के, क्योंकि बच्चा जितना चिड़ा हुआ है उसने दोपहर को सोया नहीं है, 5 बजे इज़ लाइक अ पीक मेल्टडाउन, 5-6 बजे मतलब खाना स्ट्रेस हो रहा है, यू नो सब कुछ स्ट्रेस हो रहा है, एंड सडनली यू नो बच्चा इतना चिड़चिड़ हो रहा है, तो दैट इज़ वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो बच्चे पे बिहेवियरल वो आ रहा है.
Actually, I'll interrupt here. Yeah. I have actually heard.
Yes.
दो तीन दिन पहले there was a birthday party
yeah.
of kids. एक मम्मी ने बोला कि मैंने उसका 3 साल की हुई बेटी, मतलब मैंने उसमें एक major behavioral change देखा. She's become very chirchy.
Yeah.
तो I'm sure she has dropped the afternoon nap because school का time लंबा हो गया है. And everybody has increased the time. Just a few moms जिनके बच्चे actually छोटे हैं, 2.5 साल के हैं, we are still sticking to the, like, you know, getting them up from school early ताकि afternoon nap मिले.
Right.
So I think that is the reason.
Yeah.
Yeah.
दूसरा, अगर आपके बच्चे हैं जिन्हें आपने nap drop कर दिया, जैसे like suppose आप कुछ 4 महीने बाद शायद आप वो decision लोगे, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी बच्ची को अभी भी वो नींद की ज़रूरत है, बट आपको पता है कि वो टोटली आपके स्लीप में बीच में आ रही है क्योंकि वो रात को उठने लगी है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो समथिंग कॉल्ड एज क्वाइट टाइम जो हमें करना चाहिए. तो आप बच्चे को 3-3.5 बजे ले आए हो स्कूल से, आप उसको स्लीप एनवायरमेंट में ले जाओ, कर्टन्स डाउन करो एंड मे बी जस्ट रीड अ बुक विथ हर, और आप उसके साथ खाली लाई डाउन करो, उसके साथ बहुत ही लो टोन में बातें करो, कम से कम 40 मिनट्स तक उसको एकदम नैप एनवायरनमेंट में रखो. उससे क्या होगा कि बच्चा सोया तो नहीं है पर बच्चा काम डाउन हो गया है. वो क्वाइट टाइम से क्या होगा, जितनी भी स्टिमुलेशन हुई है हमने वो स्टिमुलेशन कैंसिल कर दी है और वो बच्चा बेड टाइम तक ओवर टायर्ड नहीं होगा. ओवर टायर्ड नहीं हुआ तो हमारी सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती जाएगी. तो हमें वो क्वाइट टाइम जब हम नैप ड्रॉप करते हैं, स्पेशली एट 2 to 4 years old जब हम वो नैप ड्रॉप करते हैं, इफ़ यू डिसाइडिंग टू ड्रॉप द नैप, क्वाइट टाइम को अडाप्ट करो. वो तुरंत बच्चा बैठेगा भी नहीं 30 मिनट के लिए, पर हमें वो एनफोर्स करना चाहिए कि हम नहीं, मैं बैठी हूँ यहाँ, या आपके कोई केयर गिवर बैठे हैं उनके साथ, बुक पढ़ रहे हैं, पजल्स कर, नथिंग टू स्टिमुलेटिंग, बहुत ही क्वाइट, फिनिश दैट 40 मिनट्स, ले आओ, यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, योर चाइल्ड विल नॉट हैव दोज 5 o'clock, 6 o'clock मेल्टडाउन्स.
सुपर्ब, आई मीन दिस इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग, मतलब आई श्योरली फील दैट आई एम अ न्यू मॉम टुडे. हम लोग कोशिश करते कि बिजी रखें और ओवर स्टिम्युलेटिंग चीज़ें कर लेते दोपहर को, वो बच्चे और थक जाते हैं, कुछ नहीं तो चलो नीचे खेलने भेज दो क्योंकि वो हाइपर है एनी वेज, तो शाम तक बहुत ही ज़्यादा थक जाते, वी रियली मतलब शाम भी खराब हो जाता है. सो अगर नींद कट डाउन करना है, वी कैन हैव अ क्वाइट टाइम. इट्स अ न्यू वर्ड इन माय दिस मॉमीज डिक्शनरी. आई एम ग्लैड. सो वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई विल आस्क, बिकॉज ऑफ यू नो बीइंग अ पब्लिक फिगर, माय लाइफ इज ओपन टू पीपल. सो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस आते हैं. सो आई गेट overwhelmed with opinions, so I am asking a sleep coach what is the right and the wrong in this. To mere ghar pe there is a separate bedroom for my children. Right from the time that they were born I made their bedroom tha, because I had only one child aur abhi there is 2 small single beds for them to sleep. Aisa kaha bhi jata hai that you know co-sleeping is important till 5, 6, 7, 8 year old I think. और समटाइम्स ऐसा लोग बोलते हैं कि यू नो स्लीपिंग यू नो सेल्फ स्लीपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. तो व्हाट इज़ द राइट हियर?
ओके, को स्लीपिंग इज़ ओके, बट लेट्स रिमेंबर कि अगर हमें बच्चे को अपने आप पूरी नींद चाहिए तो हमें बच्चे को इंडिपेंडेंटली स्लीप सिखाना चाहिए. अब ये बहुत ही ट्रिकी है क्योंकि हमारे फैमिलीज़ में सब बहुत एंडोर्स करते हैं कि नहीं बच्चे को वॉर्म चाहिए, और एक्चुअली में जब हम इंडिपेंडेंट स्लीप सिखाना चालू करते हैं ना, ये 0 एज से चालू भी नहीं होता है. 4 मंथ्स के जब आपके बच्चे हो जाए, जब आपने फीडिंग इस्टेब्लिश कर ली है, स्केड्यूल इस्टेब्लिश करे, उसके बाद हमें बच्चे को क्या आदत डालनी है सुलाने के लिए वो हमें अडेप्ट करनी चाहिए. हम सेम रूम में भी क्रिब रख सकते हैं, हम दूसरा रूम भी रख सकते हैं, इसमें कोई राइट रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ अ पेरेंटिंग फिलॉसफी. पर एज अ स्लीप एक्सपर्ट हमें एक सेपरेट बेड क्यों चाहिए या फिर हमें रेलिंग्स बच्चे के अराउंड क्यों चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं टू अंडरस्टैंड इनविजिबल बाउंड्रीज. आपका बच्चा रोल करना सीखने वाला है, आपका बच्चा वॉकिंग सीखने वाला है. आप अगर बच्चे को 8-9 बजे बेड पे रख दोगे, सबके पास मतलब आप कैमरा में पूरे तरह हमेशा वही देखते रह जाओगे वरना, राइट, आप आराम से रूम के बाहर भी नहीं बैठ पाओगे. तो इनविजिबल बाउंड्रीज उन्हें नहीं समझ में आती, इसलिए हमें एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्लीप बेड होना चाहिए. इंडिपेंडेंट स्लीप हैबिट भी क्यों होनी चाहिए, रात को जब हम को स्लीपिंग कर रहे हैं हमारा एक काइंड ऑफ फिजिकल टच होता ही होता है उनके साथ. तो जो आदत हमारी रॉकिंग की उनके साथ, जो मैंने आपको बताया कि वो एसोसिएट करते हैं, रात को अगर बच्चा घुस के हमारे अंदर सो रहा है, हाँ उसे वॉर्म्थ मिल रही है, पर हम है पूरा दिन हमारी लव अश्योरेंस और सब उनको देने के लिए. तो ज़रूरी नहीं है कि वो रात में ही आने वाली है. वो हमें एक माइंडसेट हमें चेंज करना है कि हम उसको पूरा कंफर्ट दे के सुला रहे हैं. अगर वो बच्चा रात को उठ रहा है और क्योंकि वो चिपक के सो रहा है, वही कुछ महीनों बाद हमें ही इरिटेट कितनी बार करने लग जाता है कि यार बच्चा बहुत हमारे साथ ऐसे सो रहा है, हम कैसे इसको अपने आप सोना, क्योंकि जैसे हम हटे वैसे बच्चा उठ गया, क्योंकि बच्चे ने अपनी उतनी डिपेंडेबिलिटी कर ली है. हमें इंडिपेंडेंट स्लीप इस्टेब्लिश करनी है सो दैट वो बच्चे की नींद भी पूरी हो और माँ की भी, क्योंकि आपकी स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम क्यों हमारी मदर्स की स्लीप को इतना अंडरलाइन कर देते हैं, मतलब कि बस जाने ही वाली है, और जबकि हमें पूरा वर्किंग करना है, फ्रॉम काम पे भी जाना है, और बहुत मदर्स ब्रेन, मॉम ब्रेन इज अ लाइक अ रियल थिंग कि हम इतनी चीज़ें हमें करनी होती है. सो इफ़ यू अडेप्ट के हम बच्चे को अलग बेड पे सुला रहे, को स्लीपिंग भी आप कर सकते हो और उसमें भी आप इंडिपेंडेंट स्लीप कर सकते हो, बट एक छोटा डिस्क्लेमर है, वो बच्चा रात को आपको टच कर रहा है तो शायद वो बच्चा रात को फिर वो टच की नीड में होगा, बट इफ़ यू आर ओके विथ इट, यू कैन डू इट. इफ़ यू आर ओके टू हैविंग अ सेपरेट बेड, दैट्स योर पेरेंटिंग चॉइस. And you should be adapting to what you feel as your philosophy.
Okay, so the child, there's no right and wrong for the child. You should do what works best for you. But what is important is to understand that sleep for the mother is equally important for her to function fully throughout the day. ताकि नींद में ना रहूँ, ग्रोगी ना रहूँ, चिड़चिड़ करके बच्चे के ही दो ना पड़ जाए, क्योंकि रात को नींद नहीं हुई.
रात को नींद नहीं हुई.
आई हैव हर्ड माय फेलो मम्मी सेइंग कि यू नो हाथ के ऊपर रात भर सोई, मेरा हाथ पूरा झिनझिन हो गया. एंड बिकॉज मैं एक्चुअली सेपरेट स्लीपिंग ज़्यादातर कराती हूँ, कभी कभी मैं साथ में लेके सोती हूँ व्हेन देयर आर सिचुएशंस की यू नो देयर इज नोबडी एल्स टू टेक केयर, तो मैं साथ में सोती हूँ. सो माय चाइल्ड इज काइंड ऑफ यूज्ड टू स्लीपिंग, मतलब ऐसे बिना टच के,
बिना टच के,
तो वो थोड़ा एकदम किसी को टच मी नॉट करके ही सोते हैं. उसके ऊपर हाथ वाथ भी लग जाता है तो हाथ हटाओ हाथ हटाओ करती है. तो बट ये है कि हाँ उठ के कंधे पे चढ़ जाती है कभी, दैट बाहर घुमाओ वाली चीज़, आई फिक्स्ड दैट. सो वॉट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर मी इज़ वॉट इज़ राइट एंड रॉन्ग, वेदर को स्लीपिंग और इंडिपेंडेंट स्लीपिंग. इफ़ यू हैव अ रूम, इफ़ यू हैव अ सेपरेट बेड, यू नो स्पेस टू keep a cot or a separate bed, then nothing like it. But so many Indian household mein wo possibility nahi hai, then they co-sleep, that's also not wrong.
That's not wrong, completely.
Yeah. So it is better to let them sleep by themselves, ki aap khud so, aur bina touch feel karke, aur aage jaake acha hoga.
Acha hoga.
Oh my God, amazing, amazing Bhakti. Thank you so much. आपको आप इतना मुझे एनरिच करने के लिए आज से मैं मतलब मैंने जैसे बार बार बीच में बोला कि मैं घर जाके फील करूँगी मैं नई कोई आ गई हूँ घर पे. सो आई एल एस्टैब्लिश अ न्यू ब्यूटिफुल स्लीप रिलेशनशिप विथ माई चिल्ड्रेन. एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर एनरिचिंग माई ऑडियंस विद दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर लाइफ, स्लीप.
थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड टू बी हियर एंड आई एम श्योर कि कुछ टिप्स बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए और आपके ऑडियंस के लिए.
हाँ, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा हमारा ये कॉन्वर्सेशन. जैसे मैं कह रही हूँ कि आई हैव बिकम अ न्यू मॉम एज रिस्पेक्ट टू यू नो सीइंग व्हाट स्लीप इज. स्लीप थोड़ा सा मतलब मुझे लगता था बच्चे सो जाएंगे, नहीं भी सोए तो क्या, मतलब इतना कभी सोचा ही नहीं था. पर मुझे अभी लग रहा है कि अब मैं क्योंकि इसके बारे में मैंने इतने अच्छे से समझा, अभी आई विल गिव इट एन इम्पॉर्टेंस एंड आई विल आई नो इट विल बी अ डिफरेंट सीनैरियो ऑल टुगेदर एज फार एज द होल डेवलपमेंट एंड द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस इज कंसर्न्ड. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द देबीना बनर्जी शो.
The Debina Banerjee Show, brought to you by Pegboard.